शांति। आज का सेशन हिंदी में है और हमारे साथ आत्म भाई हैं, आत्म प्रकाश भाई, जिन्होंने ज्ञान 1970s में लिया था महाराष्ट्र में है। फिर थोड़े समय के अंदर मधुबन आए वो, और जैसे मैंने कल बताया कि सूर्य भाई 60s में मधुबन में आए और उन्होंने बहुत अभ्यास किया जो बाबा मूली में सुनाते हैं, वैसे ही आत्म प्रकाश भाई ने भी बहुत अभ्यास किया। उनकी स्पेशलिटी क्या थी कि आत्मिक स्थिति का बहुत अभ्यास करते थे और कराते थे, हमारे पीछे लग जाते थे, चार्ट रखो। तो मधुबन में उन समय में किचन छोटा था, तब तो बड़ा लगता था, एक तरफ सूर्य भाई दूसरी तरफ आत्म भाई। सूर्य भाई भोजन बनाता था, आत्म भाई टोली बनाते थे, हम बीच में आते थे, यहां मदद करते थे वहां मदद करते थे। तो हम लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे कि पुरुषार्थ करो, और तभी हमने किया तो आज काम में आ रहा है। तो ये उनकी स्पेशलिटी है, पुरुषार्थ करना कराना, तो वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो आज का टॉपिक है निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। सो आत्म भाई।
ओम शांति। हमारा विषय है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति का अनुभव करना। बाबा ने अंतिम दिनों में यह महावाक्य उच्चारण किए थे कि मीठे बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। ब्रह्मा बाबा इतने व्यस्त रहते हुए भी बाबा ने ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाई थी। हमारे सामने बाबा की स्थिति शांति स्तंभ के रूप में अभी भी मौजूद है। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। तो ऐसी स्थिति बनाना अगर हमें है तो उसका जो सीक्रेट है, उसके लिए पहला कदम है निराकारी स्थिति को बहुत पक्का करना। क्योंकि बाबा हर मुरली में इतने वर्षों से आत्म अभिमानी स्थिति पक्का करो ये बार बार दोहराते आए हैं। एक भी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने ये इशारा नहीं दिया है। बात स्पष्ट हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ हमारा है आत्म अभिमान स्थिति पक्का करना, यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसको हमें रियलाइज करना है क्योंकि जितना हम निराकारी स्थिति पक्का करते हैं उतना निर्विकारी स्थिति हमारी बनती जाती है। और जितना हम निर्विकारी बनते जाते हैं उतना हम निरहंकारी बनते जाते हैं। ये तीनों का बहुत गहरा कनेक्शन आपस में है। वास्तव में देखा जाए तो अशरीरी जो स्थिति है, निराकारी जो स्थिति है, ये बीज है। उससे जो वृक्ष निकलता है, जीवन रूपी जो झाड़ निकलता है, उस पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते हैं निराकारी स्थिति के बीच से। और देहाभिमान का जो बीज है उससे जो वृक्ष निकलता है उस पर विकार रूपी फल लगते हैं, फूल लगते हैं। हमें क्या करना है? इस देह विमान का जो बीज है उसको हमें योग अग्नि में भस्म करना है, खत्म करना है। और जो निराकारी स्थिति का जो बीज है उसको स्नेह के पानी से, पुरुषार्थ के पानी से बहुत अच्छी तरह से वृद्धि को पाना है, जिससे जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है निराकारी स्थिति को मुझे पक्का करना है। ये 84 जन्मों का होमवर्क है। कितने जन्मों का? 84 जन्मों का। 63 जन्मों का जो देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है उसको हमें हटाना है। और 21 जन्मों के लिए आत्मा का भान नेचुरल रहे उसको हमें जुटाना है। कितने जन्मों का होमवर्क हो गया? 84 जन्मों का होमवर्क हो गया। और ये होमवर्क करने के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। अपने से पूछें कि थोड़े समय में अगर ये होमवर्क पूरा करना है तो कितनी मेहनत इस बात पर मुझे करनी होगी। थोड़ा सा हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं, 2-4 साल, 5-7 साल, सूक्ष्म अहंकार आता है, ये क्या आत्मा का लेसन, ये नए बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं है। ये अहंकार हमें उस पर काम करने नहीं देता है और उसके कारण हम 5-10 साल आगे बढ़ते ही जाते हैं और स्थिति हमारी हलचल में आती ही रहती है। समझा। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। अंतिम दिन तक बाबा ने अशरीरी स्थिति के अभ्यास की मॉलिश पॉलिश करते ही रहे, उसको पक्का करते ही रहे। बाबा के पास आने के बाद अगर हम बहुत ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट यही है। अशरीरी स्थिति पर हमारी बुद्धि की पकड़ हो और स्वमान के अभ्यास पर हमारी बुद्धि की पकड़ हो। ये दो बातों पर बुद्धि की पकड़ होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हलचल में लाए, कोई नहीं ला सकता है। लेकिन इन दो बातों में से अगर कोई बात हमारी छूट जाती है, ढीली हो जाती है, तो स्थिति हमारी नीचे आ जाती है। तो निराकारी स्थिति मुझे पक्की करनी है, उस पर मुझे दिल से अभ्यास करना है। अभी कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है? निराकारी स्थिति का अभ्यास करने की विधि बड़ी सरल है। सबसे पहले आत्मा को देखना होगा, उसके बाद ही उसका अनुभव करना होगा। आत्मा को कैसे देखेंगे? हाँ जी, इस शरीर को आईने में हम इन आंखों से देखते हैं, स्थूल आंखों से स्थूल शरीर को देखते हैं। आत्मा को देखने के लिए आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो आत्मा की आंख कौन सी है? हाँ जी, ज्ञान का नेत्र। और बोलो। हाँ जी, दिव्य नेत्र। और बोलो। हाँ जी, सुभाष भाई बोलो। हाँ, तीसरा नेत्र। वो कहां है तीसरा नेत्र, किधर है? हाँ जी, तीसरा नेत्र तो हम कह दिया, लेकिन है कहां वो चीज? आत्मा कहते हैं, आत्मा का भी वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, किधर है वो? अभी मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूं, पूछो। क्या आपने जानकी दादी जी को देखा है? देखा है, दिखाई दे रही है उनकी तस्वीर मुझे? आप तो मुझे देख रहे हैं, फिर भी कोई शक्ति देख रही है उनको? दूसरा प्रश्न, दादी जी के बारे में कुछ बातें आप बताएंगे, कैसी है दादी, क्या उन्होंने विशेषता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, बहुत मीठी है और बहुत लवली है और हाँ ज्ञान की गंगा है और एनर्जेटिक है। अभी देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा, क्या आपने जानकी दादी जी को देखा है, तो तुरंत उनको कोई शक्ति देख रहे थे, आत्मा की कोई शक्ति उनको विजुलाइज कर रहे थे, कर रहे थे। वो है बुद्धि रूपी नेत्र, आत्मा की विजुलाइज करने की शक्ति है, दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, दादी जी कैसी है? बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है, रहम दिल है, ज्ञान की गंगा है। ये एक एक बात सोच के मुझे आप बता रहे थे, वो है मन। देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। इसको एकांत में बैठकर हमें अंतर को क्लियर समझना है। प्रायः देखा जाता है तो लोगों का इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसके कारण योग उनको कठिन लगता है। मैं जब ज्ञान में आया 3 साल तक मुझे योग बहुत कठिन लगता था, लेकिन किसी सज्जन ने छोटी सी बात मुझे बताई कि आत्मा ये जो शक्ति है उसके देखने वाली शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र कहलाती है और सोचने वाली शक्ति मन है, उसके बाद बिल्कुल सहज योगाभ्यास मुझे हुआ। समझा? तो इसको हमें फील करना है, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। मैं आत्मा तो एक शक्तियों का पुंज हूं, लेकिन आत्मा की देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। फिर आत्मा का अनुभव करने के लिए उसको हमें यूज करना है। कैसे करना है? बुद्धि रूपी नेत्र को ब्रुकुटी के बीच में फोकस करो और आत्मा को देखने का प्रयास करो। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये सितारे तो आसमान के सितारे तो आंखों से दिखाई देते हैं, स्थूल आंखों से, लेकिन ये जो गजब का सितारा है इसको देखने के लिए विशेष नेत्र, विशेष दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए गजब का सितारा हूं, वंडरफुल स्टार हूं। और गजब का सितारा क्यों हूं? छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पहाड़ भरा हुआ है, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी घिसता नहीं है, इसलिए गजब का सितारा हूं। बाबा ने हम सभी को पुरुषार्थ रूपी कार दी है, दी है, हाँ जी। उस कार को हमें याद की यात्रा पर दौड़ाना होता है, ठीक है। अब उस कार की याद की यात्रा पर जो कार दौड़ती है, पुरुषार्थ रूपी कार, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे भाई? स्थूल कार तो चाबी घुमा देते हैं, हाँ भाई जी, बैटरी स्टार्ट होती है, हाँ भाई साहब कनाडा वाले, गाड़ी स्टार्ट होती है। अब इस पुरुषार्थ रूपी कार को कैसे स्टार्ट करें भाई? हैं जी, स्टार जब तक समझते नहीं है स्वयं को, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है। मैं कौन हूं बोलो ना? मैं केवल स्टार नहीं हूं, लेकिन कौन हूं? सुपर स्टार हूं। ये सारे सुपर स्टार यहां बैठे हैं, तालियां तो बजाओ जरा। बाबा सुप्रीम स्टार है और हम कौन है? केवल स्टार नहीं, सुपरस्टार है, हीरो एक्टर है। हमारा कोई ऑर्डिनरी रोल इस ड्रामा में नहीं है, हीरो रोल है। बाबा ने कहा मैं आपको हीरो पार्ट देता हूं, हीरो एक्टर का रोल देता हूं, लेकिन एक ड्यूटी भी देता हूं। कौन सी ड्यूटी देता हूं भाई, बताओ? हैं जी, जल्दी बोलो। मैं ड्यूटी देता हूं एक, आपको सुपरस्टार का रोल देता हूं, लेकिन एक ड्यूटी देता हूं। कौन सी ड्यूटी देता हूं बताओ भाई, हैं जी, क्या साक्षी होके देखो, बोलो बहने, हैं जी, मैं ड्यूटी देता हूं सदा खुश रहना है और खुशियां बांटना है, सदा सदा खुश रहना है और खुशियां बांटना, ये मैं ड्यूटी दे रहा हूं। सदा खुश कैसे रहेंगे भाई, हाँ जी, कोई महिमा करता है हमारी तो बड़ा खुश होते हैं, और थोड़ी सी कोई ग्लानी करता है मुरझा जाते हैं। एक स्लोगन लिखो, निकालो डायरी, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, चेहरा कितना भी सुंदर हो उस पर मुस्कुराहट नहीं होती है ना, कोई देखना नहीं चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। क्या बोला, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरा हमेशा प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक है मन हमारा सदा प्रसन्न रहे, और मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार हमारा मन का दरवाजा खटखटाते हैं। कौन से तीन चोर है वो, चिंता, भय और बोझ। ये चोर बार बार हमारा दरवाजा मन का खटखटाते हैं और हमारी खुशी को, हमारी प्रसन्नता को चुराना चाहते हैं। कोई नहीं चोर सकता है हमारी खुशी को, चिंता, भय और बोझ तीनों हमारे पास पटक नहीं सकते। चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, चिंता काहे की भाई, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा बैकबोन हो गया, भय किस चीज का, सारे संसार का बोझ ढोने वाला बाप मेरा बाप बन गया तो मेरा बोझ नहीं ढोएगा। तीनों बातें खत्म हो गई, सदा प्रसन्न रहने लगे और चेहरा प्रसन्न रहने लगा। ठीक है, तो हमेशा खुश रहना है, खुशियां बांटना है। लेकिन क्या होता है, आत्मा का अभ्यास तो हम करते हैं, थोड़ा उसमें आनंद भी आता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बोर होने लगता है। क्या बिंदी बिंदी बिंदी, कब तक बिंदी समझेंगे, बोर होता है भाई, सच सच बोलो, हाँ जी बोर होता है, बोलो ना, बोलो ना जल्दी, बर्मा वाले हैं, कभी कभी होता है, देखो बहन सच कह रही है। हमारी दादियां कभी नहीं कहा, दादियों ने, कि आत्मा का अभ्यास हमें बोर होता है, हम छोटे से एक भूल करते हैं, स्व माना मैं आत्मा हूं ये हम मुझे पता है, लेकिन मान अर्थात मैं महान आत्मा हूं, ये दो बातें अगर साथ में होगी, स्व और मान, तो अभी ये आत्मा का अभ्यास कभी भी बोर नहीं हो सकता है। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हूं, लेकिन मान अर्थात महान आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, हीरो पाठधारी हूं। तो जब समान में स्थित रहते हैं तो उसका भरपूर आनंद हम ले सकते हैं। एक बार बाबा की मुरली विदेशियों के लिए चल रही थी, बाबा ने कहा स्वमान एक शब्द है, केवल एक शब्द है स्वमान, स्वमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। देखो कितना गहरा राज है इसमें, समान एक शब्द है, उसको स्वरूप में लाएंगे, धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे, इतनी श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनेगी, कितना गहरा राज है इसमें। लेकिन स्वमान में रहने की विधि भी हमारे पास क्लियर होना जरूरी है। केवल स्वमान के पॉइंट 108 बार लिखना, कितने बार लिखना, उससे कुछ नहीं होगा। उसका हमें अभ्यास करना जरूरी है, उसमें हमें टिकना जरूरी है। स्वमान में स्थित होने की विधि क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। बाबा ने स्वमान के पॉइंट बहुत दिए हैं ना, 100 से भी जास्ती है। उसमें से कोई भी जो अच्छा पॉइंट आपको लगता है, आपकी आत्मा को जो खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है, मस्ती चढ़ाता है, वो एक या दो पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, या मैं विजयी आत्मा हूं, या मैं शिव शक्ति हूं, मैं योगिनी हूं, मैं तपस्विनी हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं उदार मूर्त आत्मा हूं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से एक या दो टाइटल आपकी आत्मा के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है। उस टाइटल पर बहुत अच्छी तरह से गहरा मनन चिंतन करना है। उदाहरण लीजिए कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, ये आपने टाइटल लिया, तो विश्व परिवर्तक आत्मा के संकल्प कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। विश्व परिवर्तक आत्मा के बोल कैसे होते हैं, बहुत महान होते, श्रेष्ठ होते, प्रेरणा देने वाले होते हैं। उसके कर्म कैसे होते हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उसके चलन कैसी होती है, उसका चेहरा कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाएं, मनन चिंतन करें, फिर उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। मैं आत्मा हूं, लेकिन किस प्रकार की आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। सिंहासन पर बैठना माना मैं आत्मा, सिंहासन क्या है, विश्व परिवर्तक के सिंहासन है। मैं आत्मा विश्व परिवर्तन आत्मा हूं, परिवर्तक आत्मा हूं। सिंहासन पर बैठ गए, आपका सोचना, देखना, बोलना सब कुछ बदल जाए। और एक दिन वो आएगा, आपको उसका नशा, मस्ती ऑटोमेटिक होगी। Thank you. अभी हम बहुत सुंदर आत्मा का अनुभव करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, जब ओम मंडली में शुरू शुरू में हमारी दादियां छोटी छोटी बच्चियां थी और जब ओम की ध्वनि करते थे तो उनको बहुत सुंदर साक्षात्कार होते थे। बाबा ने 14 साल तक आत्मा का ही अभ्यास पक्का कराया, उनको समान का अभ्यास पक्का कराया। अब वो तो चांस हमें मिला नहीं भाई, लेकिन ओम की ध्वनि की चकाचुकी तो हम जरूर कर सकते हैं, अनुभूति जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे, सीधा बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे बूढ़े की तरह नहीं बैठो, सीधा बैठो और ये आंखें बंद करना है आपको, स्थूल तीसरी आंख खोलनी है, आत्मा की जो आंख है ना वो पूरी खोलनी है और मेरे साथ ओम की ध्वनि करना है। रेडी रखना ना, मैं जब बोलूंगा ना तब पहला करना, मैं जब बोलूंगा तब सॉफ्ट म्यूजिक बजाना पहले। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति विराजमान हूँ। उस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चौओर पांच सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति को देखते हुए सभी मुख से ओम की ध्वनि करेंगे। आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति को देखते हुए सभी बोलो मेरे साथ हो, मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। सफेद लाइट करना। आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा मुख से बोलेंगे तो आत्मा के स्वरूप को देखना है, ज्योति स्वरूपा मुख से बोलेंगे तो ज्योति स्वरूप स्वयं को अनुभव करना है, आत्मस्वरूपा मुख से बोलेंगे तो आत्मा के स्वरूप को देखना है दिव्य नेत्र से, ज्योति स्वरूपा कहेंगे तो उसको अनुभव करना है। अनुभव करते हुए सभी बोलेंगे सभी बोलो, बोलो सभी, ज्योति स्वरूपा आत्म स्वरूपा, बोलो सभी, आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा,
आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्म ज्योति स्वरूपा, आत्म ज्योति स्वरूपा, आत्म ज्योति स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा, आत्म ज्योति स्वरूपा, आत्म स्वरूपा, आत्म स्वरूपा, ज्योति 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 स्वरूपा, आत्म स्वरूपा, आत्मा रूपा ज्योति रूपा, आत्मा रूपा ज्योति रूपा, आत्म 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 रूपा ज्योति रूपा, आत्मा रूपा ज्योति रूपा, आत्मा रूपा, ज्योति रूपा, आत्मा रूपा, ज्योति रूपा, आत्मा रूपा, ज्योति रूपा, आत्मा रूपा, ज्योति रूपा, ज्योति रूपा, आत्मा रूपा, ज्योति रूपा, आत्मा रूपा, ज्योति रूपा।
सभी खड़े हो जाएंगे अभी अपने अपने स्थान पर, और दो की जोड़ी करेंगे, एक दो के सामने खड़े हो जाएंगे, अकेला कोई भी नहीं रहेगा, जोड़ी अपनी ढूंढो, जोड़ी आमने सामने खड़े हो जाओ। सुभाष भाई, वो भाई के सामने खड़े हो जाओ, वही 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 सॉफ्ट म्यूजिक है ना, सॉफ्ट म्यूजिक। ओम शांति। लाल लाइट नहीं करना, सफेद ही रखना। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं आत्मा मकान मालिक अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, सामने विराजमान आत्मा रूपी मकान मालिक को भी मैं आंखों रूपी खिड़कियों से दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रहा हूं। हम दोनों ज्योति बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक निराकार शिव पिता की प्यारी संतान है। जैसे शिव बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी है, वैसे मेरी भी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। सत्य स्वरूप में टिकने की और सत्य स्वरूप को देखने की सत्यता की शक्ति मेरी बढ़ रही है, दिव्यता की शक्ति मेरी बढ़ रही है। रूह समझकर रूह को देखने की मेरी रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य स्वरूप को आत्मिक स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता भगवान मेरे पिता बन चुके हैं। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकती हूँ और लुटा सकती हूँ, मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। कितना सुंदर कितना अलौकिक अनुभव है यह मस्तक सिंहासन। देह तो मात्र एक साधन है, देह तो मात्र एक व्हीकल है, देह तो मात्र एक मकान है, देह तो मात्र एक वस्त्र है। वास्तव में मैं आत्मा चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा हूँ।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। दरबार अपना सजाएं।
सब म्यूजिक अभी दाएं बाएं घूमते रहो, भाई भाइयों को दृष्टि देते रहो। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा हूँ। एकदम फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा भाई को देख रहा हूँ। अपना स्थान भी छोड़ सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, आत्मिक दृष्टि का और आत्मिक स्थिति का अनुभव को बढ़ाते चलो। बहुत सुंदर अभ्यास करो। अपना स्थान भी छोड़ सकते हैं और एक दो को आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक दृष्टि में देखने का सुंदर अभ्यास करेंगे। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम में, वैसे इस हॉल में चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों की रिमझिम लगी हुई है। हम सभी चैतन्य आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों को बाबा परम धाम से देख देख हर्षा रहे हैं और हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की भी वर्षा कर रहे हैं। कितना प्यारा, कितना सुंदर अलौकिक अनुभव है यह। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर आत्मिक दृष्टि में देखने का अनुभव, जैसे शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी थी, वैसे मेरी भी दृष्टि निराकारी निर्विकारी बनती जा रही है। दिव्यता की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा राजा हूँ, समान के सिंहासन पर विराजमान हूँ और सामने विराजमान आत्मा राजा को एक दो के सामने खड़े हो जाएंगे, एक दो के सामने खड़े हो जाएंगे। मैं आत्मा राजा, सामने विराजमान आत्मा राजा को बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूं। आत्मा रूपी राजाओं की सभा इस हॉल में लगी हुई है, आत्मा रूपी राजाओं की दरबार इस हॉल में लगी हुई है। बाबा की, शिव बाबा की आस अनेक वर्षों से थी, मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ, तो आज वो आस मैंने पूरी की है। मैं आत्मा राजा हूँ, सुमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ। कर्मेंद्रिया मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा मेरे नियंत्रण में और अनुशासन में है। हम दोनों आत्मा आत्मा राजा राजा बड़े सम्मान की दृष्टि से मीठी दृष्टि एक दो को दे रहे हैं। सचमुच गजब का रोल हम सभी का इस बेहद ड्रामा में है। स्वयं भगवान ने हमें गजब का रोल इस बेहद के ड्रामा में दिया है। अपने गजब के रोल पर हमें नाज है। धन्यवाद, बैठ जाएंगे सभी। थैंक यू। जितना हमारी निर्विकारी स्थिति बढ़ती जाती है, उतना निराकारी घर की स्मृति बढ़ती है, उतना निराकार बाप की स्मृति बढ़ती है, और उतनी दृष्टि भी हमारी निराकारी बनती जाती है। जितना निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं कितने सारे लाभ हैं। निराकारी बाप की याद बहुत सहज आती है, और जैसी जितनी गहराई की निराकारी स्थिति होती है उतनी गहराई की बाबा की याद हमारी होती है। जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी गहराई खुद में होती है उतनी गहराई खुदा में खो जाने की होती है। तो निर्विकारी बनने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास की आवश्यकता है। हम 5 साल 10 साल 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन ही नहीं आता है। क्यों भाई, क्या बात है? हर रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, फिर भी हमें कमेंट मिलता है, अभी गुस्सा आ रहा है आपको, अभी कभी फीलिंग आ जाती है। ये कमेंट बाबा का नाम कभी कभी बदनाम भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? हर रोज योगाभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं, उससे हमारे पुराने कड़े संस्कार थोड़े से नरम भी बनते हैं, थोड़े गर्म भी हो जाते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते। मेल्ट होने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। उसके बिना हमारे कड़े संस्कार 63 जन्मों के जो कड़े संस्कार कठोर संस्कार हैं वो परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, एक जन्म के नहीं 63 जन्मों के। इसलिए एक तरफ तो हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना है और निर्विकारी स्थिति बनाते जाना है, ठीक है, और दूसरे तरफ विशेष विकारों को जीतने के लिए विशेष दिव्य गुण धारण करना है। वास्तव में विकार क्या चीज है? विकार का कोई अस्तित्व नहीं है, विकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विकार जैसे अंधकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। अंधकार कोई चीज है? नहीं है। अंधकार तो एनर्जी भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं है, लाइट तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो 5 विकार जो है वो 5 दिव्य गुणों का अभाव है। पहला गुण पवित्रता का जो गुण है, पवित्रता की लाइट आत्मा की जैसे जैसे हम यूज करते हैं धीरे धीरे डल होती है, तो आत्मा पर काम विकार रूपी अंधकार छा जाता है, ऑटोमेटिक छा जाता है। जैसे पवित्रता की शक्ति धीरे धीरे कम होती है, डल होती है, तो काम विकार का अंधकार छा जाता है। भाई क्रोध क्या चीज है? क्रोध है शीतलता के दिव्य गुण का जो अभाव है, धीरे 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 क्रोध आ जाता है, यह अंधकार है। काम क्रोध। लोभ, लोभ क्या चीज है? संतुष्टता का गुण जो है धीरे 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 हम यूज करते हैं, वो डल हो जाता है तो लोभ आ जाता है। चौथा विकार मोह है। सबके साथ समान प्यार होना यह दिव्य गुण है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। सबके साथ समान प्यार होना, लवफुल नेचर होना, ये हमारा नेचुरल है। लेकिन किसी के साथ विशेष प्यार होना, उसको क्या कहते हैं? मोह। तो मोह विकार हमारी आत्मा में आ जाता है। और अहंकार क्या चीज है? अहंकार है नम्रता का दिव्य गुण का अभाव। जैसे जैसे नम्रता का दिव्य गुण हमारा धीरे धीरे घटने लगता है, यूज होने लगता है, तो अहंकार आ जाता है। तो कहने का भाव मेरा ये है, 5 विकार जो हैं वो 5 विशेष दिव्य गुण का अभाव है। तो एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाएं और दूसरे तरफ इन 5 दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करें तो हमारी प्रोग्रेस डबल हो सकती है, स्पीड तेज हो सकती है। विकारों के अंश वंश हमें कहां जाना है? विष्णु के वंश में जाना है। विष्णु माना विष, नो, अंश मात्र भी विकार का विष जिस आत्मा में नहीं है उसको कहते हैं विष नो। वो केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों के भी यादगार हैं। जितना हम मास्टर विष्णु बनते जाएंगे, विकारों के विष को खत्म करते जाएंगे, तो विष्णु के समीप रहेंगे, कृष्ण के समीप रहेंगे। और विकार मेरे खत्म होते जा रहे हैं कैसे पता चलेगा? भाई बीपी को और शुगर को हम फट से चेक करते हैं, भैया कल से जास्ती बीपी आ जाए, कल से जास्ती शुगर आ जाए, बोलते हैं ना। तो ऐसे हमारी निर्विकारी स्थिति बढ़ रही है या नहीं, निर्विकारी स्थिति बढ़ रही है नहीं, भाई कैसे पता चलेगा? चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने के दो तरीके हैं। पहला स्वप्न से हम चेक कर सकते हैं, दूसरा संकल्पों के माध्यम से चेक कर सकते हैं। स्वप्न जो हमें पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उसमें यूज होता है, और हमारे जो पुराने कठोर संस्कारों का प्रभाव हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा होता है। अगर हमें पांचों विकारों से संबंधित कोई स्वप्न पड़ता है, इसका मतलब वो विकार के अंश आत्मा में अभी तक भी हैं। स्वप्न पढ़ेंगे, स्वप्न पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जैसी जैसी आत्मा पवित्र बनती जाती है, पवित्र संकल्प स्वप्न पढ़ते हैं, बाबा के बारे में, सेवा के बारे में और संगम युग के बारे में स्वप्न पढ़ते हैं। और दूसरी टेस्ट है संकल्पों की। मेरे मन में अभी भी अशुद्ध संकल्प चलते हैं, इम्प्योर संकल्प चलते हैं, माना वो गंदगी अभी भी आत्मा में है, वो बदबू, वो अंश विकार के अभी भी है, वो खत्म हो जाते हैं अशुद्ध संकल्प चलना, माना उससे मैं फ्री हो गया। हमेशा महान संकल्पों का प्रवाह चलना, पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलना, शुद्ध संकल्पों का प्रवाह चलना, ये निशानी है पवित्रता, आत्मा की निशानी है। तो संकल्पों के पैटर्न को चेक करने से भी हमें पता चलता है किस प्रकार की मेरी स्थिति निर्विकारी बनी है, कितना मुझे और इस पर मेहनत करना है। ठीक है, अभी एक महत्वपूर्ण बात है, निराकारी से निर्विकारी हम बनते हैं। अब निर्विकारी में पांचवा विकार अहंकार भी आ गया, आ गया ना भाई। फिर भी बाबा ने निरहंकारी शब्द को यूज किया, क्यों, कारण क्या है, समझ में है मेरा प्रश्न? निराकारी से निर्विकारी बनते हैं, निर्विकारी में पांचवा जो विकार है अहंकार, वो भी उसमें आ जाता है। फिर भी बाबा ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया, निराहंकारी बनो, निराकारी, निर्विकारी और निराहंकारी बनो। क्यों? 95 में मैं प्रकाशमणि दादी जी का इंटरव्यू लिया, दादी जी को ये प्रश्न पूछा, दादी जी बाबा ने ये तीसरा शब्द यूज क्यों किया जबकि अहंकार इन पांच विकारों पर हैं? तो दादी जी ने जवाब दिया था, देखो जब हम बाबा के पास आते हैं हमारी झोली खाली होती है, हम खाली हाथ आते हैं बाबा के पास, कुछ नहीं होता है हमारे पास, लेकिन बाबा का पास आने के बाद कुछ पुरुषार्थ हम करते हैं, कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा योगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, अच्छा स्पीच करते हैं, बुद्धि बहुत अच्छी सालिम बनती है, प्लानिंग बुद्धि होती है, खजाने प्राप्त करते हैं। तो जो उपलब्धियां बाबा से होती हैं उसका हमें अहंकार आता है, ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा की अमानत है, ये मेरी अमानत नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया था, ये बाबा की अमानत है, और बाबा की अमानत और मुझे उसका अहंकार हो रहा है, समझा क्या? तो इस अहंकार से भी फ्री हो जाना, उसको कहते हैं निरहंकारी बनना। मुझे सूक्ष्म अहंकार है या शुद्ध नशा है? शुद्ध नशा देखो, हम राजे महाराजे बनने वाली आत्मा इस सभा में बैठे हैं, ओनार राजे महाराजे इसी सभा में है, बाहर तो छोड़ो, रॉयल परिवार की आत्माएं हैं, तो उनको शुद्ध नशा अभी वर्तमान समय होना बहुत जरूरी है। तो शुद्ध नशा तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अशुद्ध अहंकार हम कभी कभी मिक्स करते हैं, अभी दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा भाई, मुझे अशुद्ध अहंकार है या शुद्ध नशा है, कैसे पता चलेगा? उसके टेस्ट क्या है? जैसे शुद्ध नशा है तो उससे निशानी है नम्रता हमारे जीवन में नेचुरल होगी, ये उसके निशानी है। स्वभाव से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। हाईएस्ट ऑन हाई, सबसे बड़ी अथॉरिटी इस संसार में शिव बाबा है, ठीक है। लेकिन आप देखो मुरली के बाद बाबा के चेहरे की तरफ देखो, याद प्यार नमस्ते, लिटरली बाबा नमस्ते करते हैं बच्चों को। क्यों कर रहे हैं? देखो मेरे तरफ मैं कितना ऊंच हूं और कितना मैं निरहंकारी हूं, सीखो मेरे से, देखो, समझ में है? तो जितना जो निरहंकारी होता है उतना वो नम्र चित्त होता है, जितना जो बड़ा होता है उतना वो नम्र चित्त होता है, ये उसकी निशानी है। हम स्वयं को बड़ा समझते हैं और नम्रता भाव हमारे जीवन में नहीं, कोई हमें बड़ा नहीं मानेगा, कहेंगे ये अहंकारी व्यक्ति है, और अहंकारी व्यक्ति से वैसे ही दूर लोग भागते हैं। और जितना जो नम्र चित्त होता है उसके पीछे पीछे आते हैं, उसके पास आते हैं, सेवा करने का हमें मौका मिलता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें चेक करना है कि मुझे कोई गल ये अहंकार तो नहीं है, ये चेक करना है। अगर है कोई बात नहीं, उसको हटा देना है, नम्रता को अपनाना है, ठीक है ना? तो ये सूक्ष्म चेकिंग हमें करते रहना है। लेकिन निराकारी स्थिति मेरी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है या नहीं, उसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें जरूर करते जाना है। हमारा लक्ष्य केवल आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव नहीं करना है, किन क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। हम इस धरती पर कैसे आए थे? हां जी, नंगे आए थे, ना अंगे, अंग हमें यहां मिला, ना अंगे आए बिंदु बनकर, ना अंगे आए, प्रकृति ने अंग दिया, भाई लो पार्ट बजाने के लिए गिफ्ट मेरे से, जाते समय मुझे वापस कर देना, और ना अंगे जाएंगे, बिंदु जैसे आए थे वैसे जाना है। अनेक बार मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में आई थी, घर वापस गई थी, इसको स्वदर्शन चक्र घुमाना कहते हैं, स्वयं का दर्शन। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा 84 जन्मों से जा रही हूं, घर जा रहे हूं, तो स्वदर्शन चक्र घुमाने से ऑटोमेटिक हम फ्रेश भी रहते हैं, और माया अगर हमारे जीवन में आती है तो उसका हम गला भी काट सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है, जैसे जैसे निरा आत्मिक स्थिति मेरी बढ़ रही है, नहीं कैसे पता चलेगा भाई? 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं आप, कैसे पता चलेगा? अभी मैं पूछता हूं भाई, आप 10 साल से चल रहे हैं, आत्मा के अभ्यास में कितना आपका प्रोग्रेस हुआ, क्या जवाब देंगे आप बताओ? हैं जी, उसकी 5 स्टेप्स है, लिखो। आत्मा की गहराई कितनी आपकी बड़ी है वो अगर आपको जानना है तो उसकी 5 स्टेप्स है। जैसे बाबा के पास हम आते हैं, बाबा कहते आत्मिक स्मृति में टिको, तो कभी स्मृति रहती है कभी विस्मृति होती है, कभी स्मृति होती है कभी विस्मृति होती है। तो पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टिकना, टीका लगाते हैं ना, तो ये स्थूल टीका लगाने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा का टीका मुझे लगा रहे हैं। कहते तिलक है तो लक जगा हुआ है, ये तिलक नहीं तो लक सोया हुआ है, और भगवान जो हमारा साजन है उसको भी तलाक हमने दिया है। जिसका जैसा अभ्यास हम करते हैं आत्मिक स्मृति से, दूसरी स्टेप आती है आत्मिक स्थिति पक्की हो जाना, आत्मा के भान में स्थित हो जाने की क्षमता को प्राप्त करना, उसको कहते आत्मिक स्थिति पक्की होना। और जैसे जैसे आत्मिक स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि, जो सामने आता है उसके भ्रुकुटी में हमें आत्मा स्पष्ट नजर आने लगती है, हमारी दृष्टि में अलौकिकता आती है, दिव्यता आती है। इस साधारण शरीर के बजाय असाधारण दिव्य स्वरूप हमें स्पष्ट दिखाई देता है। पुराने हम ज्ञान में चल रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? अलौकिकता की शक्ति बढ़ना, दिव्यता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना, है ना? उसको कहते हैं मुरब्बी बच्चे बनना, पक्के बच्चे बनना। बाबा के प्रमा बाबा ने इतना अभ्यास किया आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक स्थिति का। बाबा की विजन को कहते थे एक्सरे विजन, जो अंदर छिपी हुई आत्मा ब्रुकुटी के बीच में वो बाबा को स्पष्ट नजर आती थी, इसलिए बाबा के विजन को कहते थे एक्सरे विजन। एक्सरे क्या करता है? अंदर जो भी ऑर्गन्स होता है ना, उसका फोटो देता है। तो एक्सरे विजन माना पारदर्शी दृष्टि हमारी बनती जाना, ठीक है? जैसे जैसे आत्मिक दृष्टि हमारी पक्की बनती है, तो चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति पक्की होना, माना आत्मा के स्थिति में स्थित होना और दूसरों का आत्मा देखना, ये अभ्यास नेचुरल होना, आत्मिक वृत्ति पक्की होना। और पांचवी स्टेप है आत्मिक कृति में स्थित हो जाना, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित रहने का अभ्यास पक्का होना, उसको कहते आत्मिक कृति। और लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना। जो संस्कार हम साथ में लेके जाते हैं, जिसके आधार पर 21 जन्म तक नेचुरल आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि हमारी सतयुग में रहती है, उसके आधार पर। अभी हमें पूछना है मैं कहाँ खड़ी हूं, कौन सी स्टेप पर खड़ी हूं, पहली स्टेप पर हूं, दूसरी पर हूं, तीसरी पर कहां हूं? मुझे तो मंजिल कौन सी है? संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव करना, जीरो देह का भान। बाबा तो हीरो कौन है इसमें? बेहद के ड्रामा में हीरो कौन है? जो स्वयं को क्या समझते हैं? जीरो समझते हैं। तो आत्मा समझना, जीरो समझना, वही हीरो कहलाते हैं, वही हीरो पार्ट बजाते हैं। ये इस वस्त्र को हमें उतार देना है, बुला देना है, गला देना है। हम बाबा के बच्चों ने बहुत सुंदर अभ्यास हर क्लब किया है, उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलो कौन सी है? हम बाबा के बच्चों ने किया, किसी और ने नहीं किया है जी? कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पांडव के बारे में क्या बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं? पांडव के साथ सबसे पहले क्या दिखाते? कुत्ता, और कुछ नहीं दिखाते। कुत्ता माना क्या? हमेशा पूंछ हिलाता रहता है, कुत्ता हमेशा पूंछ हिला, और कुछ नहीं करता। तो आत्मा की पूंछ है ये देह, ये देह की पूंछ हम साथ में, हम उसका भान हमेशा रहता है। तो पांडव जैसे जैसे पहाड़ों पर चलते गए, चढ़ते गए, तो कुत्ता भाग गया, गायब हो गया, माना देह की पूंछ हम भूल गए। और जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए, गलते गए, आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान है वो भी गल गया, वो भी मेल्ट हो गया, खत्म हो गया। और जैसे जैसे चढ़ते गए, गायब हो गए, माना परम धाम में अपने अपने सेक्शन में सेट हो गए, बैठ गए। ये हमारा गायन है, किसी और का नहीं है। हम बाबा के बच्चों ने कलप कलप ऐसी सुंदर आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया हुआ है, उसकी यादगार शास्त्रों में है, है ना भाई? क्या हुआ ये परकिन भाई है ना, कल मुझे कहते साइट सीन करने के लिए जा रहे, माउंट पर ले गए कल। भाई मैं माउंट पर चलो थोड़ा दिखाते आपको, ठीक है? गए वहां ऊपर, वो एक मकान था पुराना, तो वहां अंदर में हम जा रहे थे ना, बड़ा डर लग रहा था। और जैसे शाम का समय था, और जैसे जैसे जा रहे थे ना, आवाज आ रही, अरे भाई क्या बात है, इतना डर क्यों लग रहा है? परकिन भाई को बोला चलो भाई चलो, नहीं 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 ठहरो, जान जाओ नहीं, हम डरपोक थोड़ी है, हम भी शक्तिशाली है। तो पड़ोस में एक माता थी बूढ़ी, माता जी को बोला यहां इतना डर क्यों लग रहा है? कहते हैं भैया इस मकान में 20 साल से लाइट ही नहीं जली है, तो क्या बन गया ये बंगला? क्या बन गया? भूत बंगला बन गया। अब इस मकान में कब से लाइट नहीं, बताओ सुभाष भाई, कब से लाइट नहीं इस मकान में, बताओ ना? 2500 साल से लाइट ही नहीं है, इसलिए ये बंगला भी क्या बन गया? पांच भूतों का बंगला बन गया। बताओ भाई, और केवल पांच भूतों का बंगला नहीं हो गया, भूत हमें आत्मा को परेशान करने लगे, परेशान करने लगे, दुख देने लगे। अब बाबा ऊपर से देख रहे हैं मेरे बच्चों का हाल क्या हो रहा है, भूत कितने परेशान करे, मुझे कुछ करना होगा। बाबा ने ज्ञान सूर्य बाबा माउंट आबू में आ गया और आपके आपके देश में किसी को भेजा और वो आत्मा का दीपक जगा दिया। इस बंगले में आत्मा की ज्योत जगा दी और भूत भाग गए थे। तालियां तो बजाओ जरा। इसलिए बाबा को भूतेश्वर कहते हैं, भूतों को भगाने वाला ईश्वर या भूतनाथ, भूत को भगाने वाला भूतनाथ, है ना भाई। तो जिस घर में अंधेरा होता है ना, वहां भूतों का डेरा होता है। अब ये मेरा घर है, इसमें आत्मा की लाइट सदा जगा कर रखना ये मेरा फर्ज है। इसलिए ये माया उस दीपक को बुझाने का प्रयास करी, मुझे जगाने का प्रयास करना है, और बुझाने का प्रयास करी, मुझे जगाने का प्रयास करना है। तो जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। लेकिन जैसे आत्मा की ज्योत जग जाती है, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती है। ज्योति समझते ही माया भाग जाती है। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, एक चीज को डरता है, बताओ भाई लोग, आग को डरता है। तो इस मकान में आत्मा की लाइट जल रही है ना, तो माया हमारे पास आ ही नहीं सकती है, समझा। तो ये ज्योति निरंतर प्रखर होती रहे, विशाल बनती जाए और बहुत शक्तिशाली बनती जाए। कोई गरीब झोपड़ी वाला होता है ना, किसी महल में बहुत लाइट जलती है ना, कहता है कितनी अच्छी लाइट जल रही है, हमें फायदा हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो इस मकान में लाइट जलेगी और अड़ोसी पड़ोसी को फायदा हो गया तो अच्छी बात है ना भाई, वो तो हमें दुआएं देगा, हमारा पुण्य जन्म होगा, जमा होगा। इसलिए बहुत अखंड जो सदा जलती रहे, उसमें ज्ञान का गुरुत्व, अटेंशन का गुरुत्व डालते रहे और ये ज्योत को निरंतर प्रखर जलती रहे, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यार हमारा किससे होता है, थोड़ा सोच के जवाब देना। सबसे जास्ती प्यार हमारा किससे होता है, जल्दी जवाब दो। हैं जी बोलो, हैं बाबा से? नहीं, बाबा से नहीं होता है। बोलो कल्पना बेन, बोलो ना, अपने देह से। इतना लगाव कि थोड़ी समय के लिए हम बाबा के पास बैठते ना, तुरंत उसको खींचता है देह। इतना मैग्नेटिक पुल है उसका, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। इसलिए बाबा कहते जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। अब कौन सी कंपनी चाहिए भाई, बॉडी की चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, चॉइस आपको है, या बॉडी की कंपनी या गॉड की कंपनी। बॉडी की कंपनी से तो हम नीचे उतरते आए और गॉड की कंपनी से चढ़ती कला की अनुभूति करते जाते हैं। इसलिए जितना देह से न्यारा होते जाए उतना बाबा की याद ऑटोमेटिक आती है, समझा। इस खाल ने आत्मा को खाली कर दिया, सारे खजाने पूरे लुटा दिए इस चमड़ी ने, इस खाल ने। इसलिए हमें देह से न्यारा होना है और सबको विदेही दृष्टि से देखते जाना है और बाबा की याद हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना है। जीरो मोबाइल फोन करना है ना आपको, जीरो फोन लगाएंगे तो इस स्टेट से उस स्टेट में जाएगा भारत में, यहां से करेंगे तो बिहार में जाएगा या यूपी में जाएगा, ठीक है ना भाई। और दो जीरो लगाएंगे तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, विदेश में जाएगा। और तीन जीरो लगाएंगे तो सीधा परम धाम में शिव बाबा के पास। तालियां बजाओ ना जरा। मैं जीरो आत्मा, ड्रामा जीरो, और ये ड्रामा में जो आत्माएं हैं वो भी जीरो, और बाबा जीरो, सीधा परम धाम में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना भाई। क्रिकेट लोगों को आजकल देखना बहुत अच्छा लगता है, लगता है ना भाई लोग, बताओ देखते हैं ना क्रिकेट, देखते हैं? हाँ देखो ये दादा देखते हैं, खूब देखते हैं। तो बाबा ने हमें सीखा, देखना दूसरों को देखना छोड़ो, खुद खेलो क्रिकेट, खुद खेलो सारा दिन। मैं आत्मा, 10 खिलाड़ी, 5 विकार और 5 तत्व, पति तत्व, ये 10 खिलाड़ी हैं। और आत्मा जो संकल्प रूपी बॉल फेंकती हैं, तो अगर ये 10 खिलाड़ियों में किसी ने पकड़ लिया तो आउट, आउट, बस गेट आउट, चले गए आउट। लेकिन 10 को आपने चकमा दिया और इस साकारी दुनिया से पार संकल्प किया, माना आपका क्या हो गया भाई, चौका लग गया, ठीक है ना। और वो संकल्प सीधा परम धाम में बाबा के पास चला गया, माना माना चक्का लग गया, मैक्सिमम कमाई, सबसे जास्ते कमाई परम धाम में हो गई। तो ये क्रिकेट हमें सारे दिन भर में खेलते रहना है। कोई खिलाड़ी मेरे बॉल को पकड़ नहीं सकता है, संकल्प को रोक नहीं सकता है, संकल्प को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। इसलिए इनों को हमें चकमा देना है, इनों पर हमें जीत पहनना है और बाबा के पास संकल्प को पहुंचाना है। तो फिर देखेंगे एक एक सेकंड में बाबा अनेक पद्मों की कमाई हमें दिलाता है। बाबा मुझे कहेंगे याद करते हैं या नहीं करते हैं। याद को याद क्यों कहते हैं बताओ भाई, दूसरा शब्द लोगों को मिला ही नहीं है, बोलो जल्दी। याद को याद क्यों कहते हैं, याद उल्टा क्या है, दया। दया के सागर के बच्चे हैं हम, और खुद पर भी दया नहीं करते। अगर हम बाबा को याद नहीं करते हैं तो खुद पर भी नहीं दया करते हैं। जितना याद करते हैं उतनी हम खुद पर दया करते हैं, और उतने खजाने दूसरों को बांटते हैं तो दूसरों पर भी याद करते हैं, ठीक है ना। योग को योग क्यों कहते हैं बताओ, दूसरा नाम लोगों को मिला ही नहीं, योग उल्टा क्या है, गयो। देखो ये बहन जी की आंखें स्पष्ट दिखा रही, यहां नहीं है, ऊपर चली गई, बाबा के पास बैठ गए। योग में योगियों की हमेशा आंखें आधी खुले दिखाते हैं, पूरी खुले भी नहीं और पूरी बंद भी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि योगी इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से गुरु नानक जी के देखो आंखें आधी खुले है। एक ओंकार निराकार, वो बहुत दूर दूर तक जो अपना इष्ट है, इष्ट की याद में वो खोए हुए आंखें बोलती है। इसलिए योग को योग कहते हैं, याद को याद कहते हैं। इसलिए हमें हर सेकंड बाबा की याद करते रहना है और स्वयं को मालामाल करते जाना है। एक सेठ था, उस सेठ ने कहा पारस जो होता है ना, वो लोहे को लगाते हैं तो क्या होता है भाई, क्या होता है, सोना बन जाता है। वो लोभी लालची सेठ बहुत ढूंढा दुनिया में, अगर मुझे पारस मिल गया ना मजा आएगा, जितना चाहे सोना में बना दो। लेकिन मिला ही नहीं उसको पारस। पारस किसको मिला भाई, ये सारे बैठे हुए हैं इनको पारस मिला। तालियां भी नहीं बजा रहे, कमाल कर रहे हैं। पारस नाथ, बाबा ही एक ऐसे नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा जो पारस है वो आयरन एजेड आत्मा को टच करती हैं याद के द्वारा, तो ये आत्मा क्या होती है, गोल्डन एजेड बनती। असली पारस तो हमें मिला भाई। तो उस पारसनाथ बाबा की याद में हमें टिकना है, उनके कनेक्शन में रहना है, तो आत्मा जो है वो गोल्डन एजेड बनती जाएगी, सोने तुल्य बनती जाएगी। वो जो भी अलाय आत्मा में है, विकारों के अंश वंश सारे खत्म होते जाएंगे, ठीक है ना, निर्विकारी बनते जाएंगे। और जितने निर्विकारी बनते जाएंगे उतना निर्विकारी जो बाबा है उनके समीप हम अनुभव करते जाएंगे। योगी माना परमात्मा के अति समीप आत्मा है। बाबा क्या कहते हैं, योगी बच्चे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, राइट हैंड्स है, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, है ना भाई। क्यों ऐसा कहते बाबा, बच्चे तो सभी है, इतने सारे ढेर बच्चे हैं, लेकिन योगी बच्चे खास बच्चे हैं मेरे, और वो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे राइट हैंड्स हैं और निरंतर सहयोगी बच्चे हैं। क्यों, क्योंकि योगी आत्माएं हमेशा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं और पवित्रता के, शांति के, आनंद के वाइब्रेशन निरंतर फैलाने की सेवा करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं योगी सोल्स आर माय बेस्ट फ्रेंड, दे आर माय राइट हैंड्स। तो हमें सबसे बड़ा वरदान योगी भव का लेना है। संगम युग में जितने भी वरदान बाबा देता है, सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? हाँ जी, कहते हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, तो सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का। योगी भव का वरदान जो प्राप्त करते हैं उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते जाते हैं। इसलिए मुझे भगवान तो मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या क्या मिला है, क्या मिलना है, ये एकांत में हमें बैठना है और पूछना है। कितनी मेहनत हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए मिली है, तो जितनी मेहनत हमने भगवान को पाने के लिए की है उससे कई गुना मेहनत उससे खजाने पाने के लिए मुझे करना है, थकना नहीं है। ठीक है ना भाई? कहते हैं ना भाई, भगवान तो मुझे मिल गया, बस पाना था सो पा लिया, अभी कुछ मुझे चिंता करने की जरूरत। अरे भाई, भगवान मिला कितनी मेहनत किसे मिला? इतनी मेहनत से भगवान मुझे मिला, उससे जास्ती मेहनत हमें खजाने प्राप्त करने के लिए करना है। ऐसे चैन से नहीं बैठना है। ठीक है ना भाई? तो याद 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 याद, तपस्या तपस्या तपस्या। मधुबन ही ऐसा इस ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है। इस सृष्टि रूपी ग्लोब पर मधुबन ऐसा एक सबसे पावरफुल स्थान है जहां आप जो अनुभव आध्यात्मिक क्षेत्र का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि इतने वर्षों से भगवान यहाँ आ रहे हैं, इतने वर्षों से सारी जो संसार की क्रीम आत्माएं दादियां हमारी इतने वर्षों से तपस्या कर रही हैं, तो ये सबसे पावरफुल स्थान है। तो यहां आने के बाद जितनी ऊंची उड़ान आप आध्यात्म आकाश में उड़ना चाहते हैं उड़ सकते हैं। जो अरमान आप अलौकिक अनुभव करने के होते हैं वो उन अरमानों को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? इसलिए ये लॉटरी मिली है आपको बाबा के घर में आने की, और इस लॉटरी को आप फुल फायदा लेना है। लॉटरी को लॉटरी क्यों कहते हैं बताओ? हाँ जी, लॉटरी क्यों बोलते बताओ ना? मिलती है ना, आपके देश में तो होती है ना लॉटरी, लंदन में इधर उधर लॉटरी तो होती है ना भाई, कनाडा में। लॉटरी को लॉटरी क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कारण बताओ ना। लॉटरी एक साथ लमसम मिलता है, लॉट में मिलता है, लॉटरी है ना भाई। ताली तो बजाओ जरा, बाबा ने हमें लॉटरी दी है, इतनी बड़ी लॉटरी दी है भगवान हमें, मिला इतने सारे खजाने मिले भाई, इससे बड़ी तो लॉटरी दुनिया में तो कोई है नहीं। लेकिन उस लॉटरी को हमें फायदा लेना है, लॉटरी को बढ़ाना है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। लॉटरी समझो 10 लाख की मिल गई ना, जो बुद्धू होता है ना वो खाती के जीरो कर देता है, और जो बुद्धिमान होता है वो 10 लाख का 1 करोड़ करेगा, 2 करोड़ करेगा, बढ़ाता जाएगा। तो इस लॉटरी को हमें बढ़ाते जाना है और खजानों को और अच्छी तरह से वृद्धि को पाना है। लेकिन खजाने पाने का एक ही कंडीशन है। खजाने कैसे प्राप्त करेंगे भाई बताओ? हम यहाँ क्यों आए हैं? खजाने पाने के लिए आए हैं ना कि नहीं आए बताओ? तो खजाने पाने का तरीका क्या है, विधि क्या है बताओ? जितना खो जाना उतना खजाना, जितना खुद में आत्मा में और खुदा में खो जाना उतना खजाना ऑटोमेटिक मिलता है। सागर के लहरों में लहराने से अल्पकाल का आनंद हमें जरूर मिलता है, लेकिन असली माल तो नीचे होता है। हीरे जोते होते वगैरह मोती सब नीचे होते हैं। तो इसलिए प्यार के सागर के लहरों में लहराने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है हमें, लेकिन एकदम खो जाए, डूब जाए, समा जाए, लीन हो जाए, तो फिर बहुत सुंदर हमें खजाने मिलते हैं, बहुत गहन अलौकिक अनुभव के रतन खजाने हमें मिलते हैं। इसलिए हमें मधुबन में रहकर बहुत सुंदर गहन अनुभव योगाभ्यास में करते जाना है। ठीक है भाई? लेकिन एक शर्त है, बाबा के पास आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है यहाँ क्यों आए आप मधुबन में? योग तो वहां पे भी करते हैं, बर्मा में भी करते हैं, कनाडा में भी करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों आए? बाबा से मिलने हैं। और दूसरा कारण, बाबा बहुत सुंदर योग के अनुभव करने के लिए आए। तो अनुभव कब होते हैं बताओ? कोई भी अलौकिक अनुभव कब होता है हमें? अनुभव जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई अलौकिक अनुभव नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी साल चलो। और अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, तो अलौकिक अनुभव की खान आपको मिलेगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर हो रही है, ऐसा आप अनुभव करते जाएंगे। मैं कौन हूं? अनु हूं, अति सूक्ष्म बिंदु, चमकता हुआ स्टार हूं, सबके ब्रुकटे में स्टार चमक रहे हैं। ठीक है भाई, ओम शांति।
के भग भाल पर विराज रहा मैं।